ओम शांति। आज की शाम हमारे दीदी जी के नाम। देखो बाबा ने कितना हमें सहज रूप से सिखाया। 5 मिनट पहले हमें झुमाया, इतना खेल कूद कराया और अभी हम फिर अपनी स्टडी के तरफ जा रहे। आदरणीय निर्मला दीदी जी, आपका अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। दीदी जी का सपना था डॉक्टर बन के गांव गांव की सेवा करो। क्या था? डॉक्टर तो दीदी बन गई, सेवा भी शुरू की, लेकिन बाबा ने क्या किया, सारे विश्व के जो मरीज है उसको ठीक करने की सेवा बाबा ने दे दिया। तो देखो देश विदेश कहाँ कहाँ दीदी ने अपनी सेवाओं की शुरुआत की और कितने सारे बाबा के बच्चे बनाए। तो दीदी उस डॉक्टरी भी नंबर वन थी और इसमें भी नंबर वन है। तो दीदी जी का जो ज्ञान में आना हुआ 1962 में, और 1966 में तो दीदी संपूर्ण रूप में समर्पित होके सेवा में लग गए। तो सचमुच दीदी आप बहुत महान हो। और आज आपको पता है दीदी की उम्र कितनी है, 87 शुरू हुई है। तो 87 की उम्र में हमारे सामने दीदी बैठी है और इतने हमारे पालना दे रही, और सचमुच हम सभी भाग्यशाली है। इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट के रूप में दीदी ने शुरुआत की, स्टूडेंट बनी, फिर उसके बाद समर्पित हुई। आगे बढ़ते बढ़ते बाबा ने पूरा विश्व का चक्कर लगाया और वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के पद पर आसीन है। तो दीदी जी आप हम सभी इस रहस्य जानना चाहते। इतनी लंबी सफर आपने की और फिर भी आपकी अवस्था कैसी, जैसे सदा ही कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी। देखो इतना सारा फंक्शन हुआ, प्रोग्राम हुआ, लेकिन दीदी वैसे नहीं, वैसे जैसे थे एकदम नॉर्मल। तो दीदी हमें ये बताओ कि आप इतना सारा कारोबार संभालती, इतना सब, फिर भी आप न्यारी और प्यारी कैसी रहती और हम कैसे न्यारे और प्यारे बने, इसके पर दीदी आप थोड़ा प्रकाश डाल दिए।
ओम शांति। हमें मामा ने ये शिक्षा दी है न्यारा और प्यारा रहने की। तो नेचुरली है, बाबा कहते हैं ना, फॉलो मदर फादर। वैसे भी ज्ञान के पहले भी मैं न्यारी रहती थी। मैं जब ज्ञान में आई तो निर्मल शांता दादी वहाँ हमारी पालना की, और मैं 62 दिसंबर में ज्ञान में आई और 64 में प्रकाशमणि दादी बम्बई आई और निर्मल शांता दादी को कलकत्ता भेजा गया। सभी ने समझा कि निर्मल शांता दादी से उनका इतना प्यार होगा या मोह होगा जो उनको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मैं नष्ट मोह थी और मैंने कहा एक दादी गई दूसरी आई और पुष्प शांता दादी तो वहाँ थी ही, तो इसलिए मुझे कोई असर नहीं हुआ, तब बाबा ने मुझे टाइटल दिया नष्ट मोहा। और घर में भी लौकिक भी हमारी माता पिता भी नष्ट मोहा थे। हम 6 बहनें थी, 2 भाई थे। तो जब हमारी बहनों की शादी हुई, हमारी माँ रोती थी। जब मैं सेंटर पर रहने आई तो वो रोए नहीं। तो समझो ये तो जैसे कि बाबा की मुझे देन थी नष्ट मोहा पहले से ही। और विदेश में जाकर, क्योंकि विदेशी उनको धन संपत्ति तो है परंतु प्यार नहीं मिलता, तो इसलिए उनकी अपेक्षा रहती थी कि हम उनको प्यार देवे। तो इसलिए हमने वहाँ जाकर ये भी सीखा कि कैसे प्यार से उनको चलाना है। तो इसलिए ये जैसे कि हमारा संस्कार बन गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल थे। ब्रह्मा बाबा यज्ञ में उन्होंने अपनी बेटी, क्योंकि उनके लौकिक 3 बेटियां 2 बेटे थे, परंतु और उनके बेटे की बहू ब्रिजेंद्रा दादी भी ज्ञान में थी, निर्मल शांता दादी भी ज्ञान में थी, परंतु उनका व्यवहार, चाहे प्रकाशमणि दादी, चाहे निर्मल शांता दादी, चाहे कोई भी दादी थी, सबके प्रति उनका व्यवहार समान था। ऐसे नहीं कि ब्रिजेंद्रा दादी या निर्मल शांति से ज्यादा प्यार हो या उन्हों को कोई पोजीशन दी। मम्मा को उन्होंने निमित्त बनाया यज्ञ माता के रूप में। दूसरा देखा गया कि ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों से नष्ट मोहा थे। जब नारायण दादा यज्ञ छोड़ के गया तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सिर्फ आबू रोड से अहमदाबाद की टिकट थी 5 रुपया, और कहा कि मैं तो अभी मेरा तो कुछ रहा नहीं, मैंने तो ट्रस्ट को सब कुछ दे दिया, उन्हों को बच्चों को पूछ कर सब कुछ दे दिया यज्ञ में और ट्रस्ट बना दिया। तो कहा मेरा तो कुछ है नहीं, तुम्हारा भी कुछ है नहीं, तो इसलिए सिर्फ 5 रुपया। तो हम आप सभी जो गृहस्थी है उन्हों को यही राय देंगे, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रह के हमें न्यारा और प्यारा रहना है। तो लौकिक को अभी अलौकिक बनाओ। और जब अलौकिक दृष्टि से देखेंगे तो प्यार भी करेंगे, परंतु न्यारे भी रहेंगे, क्योंकि यही बुद्धि में रहेगा कि ये बाबा के बच्चे हमारे भाई बहन है और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी शिव बाबा की है, हमारी ने तो मेरा पन समर्पण कर दिया और ऐसे ही समझो बाबा ने हरेक को एक तरह से रखा। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है। दूसरा रूहानी प्यार आज सबको चाहिए, चाहे आपके परिवार लौकिक परिवार है चाहे कोई भी है। बाबा ने हमें ये सिखाया है कि हरेक को प्यार की दृष्टि से चलाओ। और मुझे याद है जब मैं पहले लंदन में थी, वहाँ एक करेबियन का युवान आया था पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। पहले दिन आया मैंने पूछा, तुम भगवान को मानते हो? कहता है, मुझे हिंदुओं का भगवान अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा है कि बच्चों को भूखा रखकर ब्राह्मणों को भोजन जब तक नहीं कराया तब तक बच्चों को भूखा रखते हैं, ऐसा कैसा धर्म? और देखो राम के हाथ में हमेशा तीर बताते हैं कि तीर से उन्होंने सोने के हरण को मारने की कोशिश की। तो क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है, तुम प्रार्थना करते हो? कहता हाँ। कौन से छवि सामने है? शंकर के। मैंने कहा अभी अभी तुम कहता था मैं हिंदू के भगवान को नहीं मानता है और शंकर की छवि क्यों रखी है? कहता है जब मैं यहाँ आता था ना लंदन में, तब मेरी माँ ने ये छवि दी थी कि उससे की पूजा जरूर करना, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में जाने के पहले दीपक जलाता हूँ और प्रार्थना करता। तो क्या है, प्यार से ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, वैसे प्यार से आप ही अपने बच्चों को जैसे चलाना चाहेंगे चलेंगे। यदि आप प्यार नहीं देंगे और स्ट्रिक्ट रहेंगे या मारेंगे पीटेंगे तो क्या होगा? बच्चे हैं तब तक तो चला लेंगे, पर जब आप बूढ़े होंगे ना तो कहेंगे जाओ बूढ़ा घर में, हम नहीं संभाल सकते। इसलिए प्यार से चलाओ परंतु न्यारा होके, क्योंकि जहां मोह होगा तो खुद भी दुखी होते हैं और स्पेशली जब अलग होते हैं रोते हैं। मिसाल के तौर पर भारत के कई लोग चाहते हैं हमारे बच्चे विदेश पढ़ने लिए जाए, नौकरी करने लिए जाए। आप एयरपोर्ट पर देखेंगे ना तो वो माँ बाप संबंधी रोते होंगे, चाहते हैं विदेश जाए परंतु रो रो के छुट्टी देते हैं। और एक माता हमको कहती है मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अच्छी लगती है, अब वो अमेरिका गया है उसको कौन जलेबी खिलाएगा, इसलिए मैं भी जलेबी नहीं खाती। और अभी अभी हमको एक माता मिली, उसका बच्चा कोरोना में मर गया, 20-22 साल का था, और माँ अभी तक रोती रही, साल भर हो गया, और कहती है मैं रोज ऐसे समझती हूँ मेरा बच्चा आया, इतना मोह था, वो बच्चा माँ को कार जाने ही नहीं देता था, कहता है माँ तुम जाएंगे घर सुना सुना हो जाएगा इसलिए तुम जाओ नहीं, और काम से आते ही पहले माँ को ढूंढता था। तो उस बच्चे का भी इतना मोह था और माँ का भी इतना मोह, बात मत पूछो, अभी तक वो देखती रहती है, सोचती है वो आया बच्चा आया, गले मिलता है, ये करता है वो करता है। तो देखते हैं मोह के वश कितना दुख होता है। कभी कभी क्या है, छोटा बच्चा है, बीमार है, बेहोश है, उसको कुछ दर्द नहीं, पर माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं, कहाँ जावे, किस डॉक्टर के पास जावे, कौन सी दवा लेने, क्या करें, परेशान। तो इसलिए गृहस्थ में रहते बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा रहो। और शुरू से ही बच्चों के साथ बैलेंस रखो, लव एंड लॉ का, प्यार भी दो तो डिसिप्लिन से भी चलाओ। तो क्या होगा कि बच्चा बिगड़ेगा नहीं, नहीं तो क्या होता है, सिर्फ प्यार ही देते हैं, डिसिप्लिन नहीं सिखाते, तो बच्चा फिर जब बड़ा होता है तो माँ बाप को ही तंग करता है, शराब पी कर, सिगरेट, ड्रग्स, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए कायदा भी चलाओ। हमारे पास फिलीपींस में एक युगल और उनके बच्चे सब ज्ञान में आते थे, फिर छोटे बच्चे जब बड़े हुए 14-15 साल के, तो लड़का है वो बुरे संग में आ गया, और बुरे संग के कारण स्कूल के टाइम घर से जाता था, स्कूल पूरे होने के टाइम घर आता था, पर स्कूल में जाता ही नहीं, और घर से चोरी भी की, सोने की चेन है उठा के ले गया, कंप्यूटर ले गया। तो क्या हुआ कि हमने कहा कि माँ बाप आप लोग थोड़ा कायदे से चलाओ, उसको कहो पढ़ना नहीं है तो अपना रास्ता ढूंढो। और नेचुरली है बच्चे के साथ जब स्ट्रिक्ट हुए तो बच्चा ठीक चलने लगा, नहीं तो बुरी कंपनी में आजकल बच्चे क्या है कि शराब सिगरेट नशा करना आदि आदि, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पंजाब में नशा बहुत करते हैं, ड्रग्स वगैरह बच्चे बहुत लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्यार भी दो तो डिसिप्लिन भी, इतने टाइम घर आना, इतने किसके संग में है बच्चे वो भी थोड़ा जांच करना है, क्योंकि बिल्कुल माँ बाप यदि बेफिकर हो जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों पर, तो बच्चे संग दोष में खराब हो जाते हैं।
थैंक यू दीदी, समझ में आया सभी को? हाँ, सचमुच दीदी बहुत ही न्यारी रहती, उनका एक कॉलेज का उदाहरण है, दीदी प्रैक्टिस करती थी शायद माइक्रोस्कोप
होता है ना,
माइक्रोस्कोप, वो दो विद्यार्थी में एक होता था। तो दीदी के साथ जो था एक भाई था, मतलब विद्यार्थी था, तो दोनों यूज करते थे, लेकिन दीदी ने कभी उनके साथ बात नहीं की। कितना साल, एक साल दो साल दीदी प्रैक्टिस चलता रहा था,
हाँ?
कितने साल बात नहीं किया वो लड़के के साथ आपने?
हमारा आप समझो एक साल का
एक साल साथ में काम करे, लेकिन बात नहीं, इतना न्यारापन दीदी के अंदर है। और दूसरी बात है, जैसे दीदी ने कहा ना नष्टोमा, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो दीदी बॉम्बे में थी और सब एकदम बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, और दीदी अकेली मुंबई में थी ना दीदी?
नहीं, हमारे सेंटर पर और हम जो गामदेवी मुख्य सेंटर था वहां शील दादी, हम दोनों नहीं गए, क्योंकि हमने कहा कि सवेरे स्टूडेंट आएंगे, कौन समाचार देगा, कौन उनको सांत्वना देगा, क्योंकि सभी को शौक लगेगा ना। तो हम दोनों नहीं गए दो दिन, परंतु दूसरे दिन फिर दादी ने फोन करके हम दोनों को बुला लिया, तो बाबा की अंतिम सब क्रिया होने वाली थी, जस्ट उस समय हम पहुंचे अग्निदाह के पहले।
ये दीदी की विशेषता है कि जहां भी कोई नहीं जाता दीदी को वहां भेजते, दीदी एकदम रेडी रहती है, मतलब किसी के साथ मतलब मोह या इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं। तो दीदी जी, हम अभी सारे प्रश्न तो नहीं लेंगे, आप इतने अच्छे परिवार, संपन्न परिवार, सब सुख सुविधाएं थी, और जब आप समर्पित हुए तो आपको क्या क्या त्याग करना पड़ा दीदी?
ज्ञान के पहले हम हर वीकेंड परिवार सहित मूवी में जाते थे
क्योंकि उनके पप्पा ही थे ना वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर
थे, पर चाहे वो अपनी फिल्म होती थी चाहे बाहर वाली, पर हमारे पिताजी हर सैटरडे या तो फिल्म में जाते थे, या तो बॉक्सिंग मैच देखने जाते थे, या तो म्यूजिक कंसर्ट में जाते थे, तो हम सभी को चांस मिलता था हर सैटरडे वहां जाने का, हर संडे बीच पर जाने का, ये हम लोगों का नियम था घर का। तो नेचुरली है ज्ञान में आकर फिल्म छोड़नी पड़ी, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ा क्योंकि घर में प्याज लहसुन तो होता ही है, और लकीली हमारे पास जो रसोई करने वाली थी घर में वो विधवा थी, तो उनके हाथ का खाना जब तक घर में थी तब तक खाती थी, पर सेंटर पर जब रहने लगी तो एक दिन भी घर में नहीं खाया न घर में सोया।
कमाल की बात है, देखो इतना संपन्न परिवार होने के बाद भी दीदी ने कितने बड़े त्याग कर दिया, लेकिन बहुत सहज रूप से। जब से मैंने दीदी को देखा है, मैं समझता हूं 85 से, तो दीदी अकेली ट्रैवलिंग करते, कोई साथ में नहीं, अपना बैग लिया चले अपना। तो दीदी जी, आप इतना सारे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, अलग अलग जगह, कितनी बार प्लेन चेंज करना होता है, कई बार इंतजार भी करना पड़ता है, तो जब प्लेन समझो लेट हो गया 4 घंटा 5 घंटा रात का समय हुए, तो आप ऐसे समय क्या अभ्यास करते, क्या सोचते हैं, या कुछ अभ्यास करते उस समय?
लकीली मैं कहूं मेरा प्लेन टाइम से पहले पहुंचा है कभी देरी से नहीं पहुंचा है, सिर्फ एक बारी हुआ कि मैं फिलीपींस में थी, रिट्रीट सेंटर से मुझे एयरपोर्ट पर जाना था। अब एयरपोर्ट जाने के लिए हमको ये मालूम नहीं था कि इतना ट्रैफिक होगा। 6 बजे के बाद इतना ट्रैफिक होता था, प्लेन मिस हो गया। फिर हमने हमको शाम तक पहुंचना था, बीच में कोई फ्लाइट ही नहीं थी, तो मैं और एक दूसरी बहन वहां के सेंटर के बस से जहां पहुंचना था वहां
पहुंच गए टाइम पे।
और नेचुरली है बस में उस बहन के साथ भी ज्ञान चिटचैट हुई और बाबा की याद भी। और खास क्या है, हमको ये ध्यान रहता है कि जहां जाना होता है वहां सर्च लाइट देने का अभ्यास, क्योंकि पहली बारी जब हम विदेश गए तब बाप दादा से मुलाकात हुई और बाबा ने ये हमको डायरेक्शन दिया था कि जाने के पहले जहां जाना है वहां आप सर्च लाइट देना। तो इसलिए फ्लाइट में खास जहां से पास होते हैं वहां मैं एम रखती हूं कि वहां बाबा का सकाश भेजने का।
दीदी वो किस्सा भी सुनाओ, जब आप विदेश यात्रा गए थे, आपका मैच बॉक्स माचिस भूल गए थे, लिफ्ट से वापस आए, फिर बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे यहाँ कोई माचिस थोड़े मिलने वाला है, माचिस लेके चला तो शिलिंद्रा को सुना संदेश आपने सुनाया था कि एक बार क्या हुआ, ये जो स्टार्टिंग में सेवा में गए थे तो सारे बाहर गए, लिफ्ट से उतर के गए, तो अचानक कुछ चीज ऐसी रहेगी तो वो उस समय वो योग करके नहीं गए थे, तो फिर बाबा ने संदेश दिया और उस समय अचानक वो योग में बैठे तो संदेश के टच हुआ शिलिंद्रा दादी को कि मैचिस बॉक्स तो आपने थैले में लिया नहीं, या दुकान में माचिस मिलता नहीं क्योंकि उद्घाटन कहीं करना था, याद है। तो इस प्रकार से बाबा इनके साथ सदा मदद करते थे। दीदी जी और एक क्वेश्चन इसी में कि आप इतना ट्रैवलिंग करते, कभी आपके कोई बैग कहीं कुछ सामान मिस हुआ, कहीं पर्स आदि नहीं हुआ होगा मैं सोचता हूं? कभी
एक बार ऐसे हुआ था कि हमारा सामान हम पहुंच गए पर सामान नहीं पहुंचा, सामान दूसरे दिन आया। तो नेचुरली है कि बहनों के पास साड़ी पेटीकोट ये तो होता ही है, पर हमने ये नियम बनाया कि एक जोड़ी कपड़ा अपने हैंड बैग में जरूर रखना है ताकि कभी सामान नहीं आया तो गड़बड़ ना हो।
देखो ये सब हम सबको सीखने जैसी बात है ना, ये छोटी चीजें होती है। एक ड्रेस तो हमारे बैग में होना ही चाहिए, कभी ट्रेन में कहीं भी जाते ट्रैवलिंग करते हैं। दीदी जी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, कितने देशों में सेवाएं की है, सेंटर की स्थापनाएं की है, बहुत लोगों को ज्ञान में भी लाया है, लेकिन इस परिस्थितियों में आपको कभी ऐसी बड़ी समस्या आई जो आपको लगा कि बहुत बड़ी समस्या सेंटर खोलने में हो या कोई भी चीज में, तो उसका आपने समाधान कैसे निकाला?
क्या है, विदेश में शुरू शुरू में तो जो ब्राह्मण ज्ञान में आए, क्योंकि विदेश की सेवा हमने 78 से शुरू की थी, तो शुरू में जो ब्राह्मण थे 21-22 साल के थे, तो इसलिए शुरू शुरू में नशा चढ़ा और सरेंडर भी हो गए। परंतु 5-7 साल के बाद उन्होंने सोचा कि हम इंडियन बन गए, हम तो ब्राह्मण बनने के लिए आए थे और ये लोगों ने तो हमको इंडियन बना दिया, बहनों को साड़ी पहनना सिखा दिया या पंजाबी पहनना सिखा दिया, अभी बाल भी बड़े रखते हैं और चोटी बनाना शुरू कर दिया है बहनों ने, और हम तो वेस्टर्न है, हमें वेस्टर्न रहना चाहिए। तो एक दो को ऐसे ख्याल आया, उसने अपना ग्रुप तैयार किया, तो 8-10 सेंटर वाले उसमें थे जो कहे कि हमको मधुबन का गीत क्यों बजाते हो, हम ट्रैफिक कंट्रोल में हमको तो ये होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही होना चाहिए, भोग क्यों लगाते हैं, ये तो भक्ति हो गई आदि आदि। तो समझो ये लोग हमारे साथ, मैं और चार्ली एक तरफ और ये 10 भाई, विशेष भाई थे दूसरी तरफ और सेंटर वाले। तो हर 15 दिन मीटिंग होती थी और चार्ली ने कहा, दीदी हमको तो बैठकर सुनना है। तो एक ग्रुप ऐसा बन गया जो एंटी ब्रह्मा कुमारी सिस्टम होना चाहिए ये मानने लगा, और कोई कोई माताएं ऐसी थी कहा, नहीं हमको तो मधुबन के ही ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाने हैं। तो जो म्यूजिक बजाने वाली थी वो मधुबन के ही ट्रैफिक कंट्रोल बजाती थी, और हमने कहा कि ये मधुबन की सिस्टम है, हम चालू रखेंगे। तो हमने फिर मधुबन की सिस्टम ही चालू रखी और वो भाई जो विरोध करते थे सब ज्ञान छोड़ के चले गए। उसमें से एक अभी
वापस आया
बाकी सब गए।
तो दीदी ने भी ऐसे नहीं कि हमारे इधर ही ऐसी परिस्थिति आती है, सब तरफ परिस्थिति आती है लेकिन उसका सामना करना पड़ता है। दीदी जी, मुझे 2008 में कैंसर हुआ था, बहुत सारी तकलीफ होती है लेकिन उसमें हमने बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे अभ्यास किए। आप भी कई बार ऐसी परिस्थिति आई, बीमार हुए, तो आपने ऐसे समय कौन से अभ्यास किए या उसको कैसे आप उस परिस्थिति से बाहर आए, ऐसा कुछ अनुभव? मतलब तकलीफ तो होती है लेकिन उसका फिर पॉजिटिवली हमने क्या इनपुट लिया उसका,
यहाँ
या कहीं भी, जैसे बीमार हो जाते, खटिया पे पड़े रहते हा? लंबा समय, तो उस समय आप कौन सा अभ्यास करते हैं?
देखो, हमारे सामने 2-3 बारी बड़ी बीमारी आ गई, तो हम क्या करते हैं बीमारी में, जो इलाज करना है करना है। क्योंकि भाई जब थाईलैंड में थी तो थाईलैंड में हमको एक बीमारी हुई, जो बीमारी 1 लाख में 1-2 को होती है। तो इसलिए थाईलैंड में तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा क्या बीमारी है। उन्होंने समझा कि हड्डी की बीमारी है, नस अटक गई है। तो इतना पैरालिसिस हो गया कि मैं खड़ी नहीं रह सकती थी, चल नहीं सकती थी, हमारा हाथ भी सिग्नेचर भी नहीं कर सकती थी मैं अपनी, मतलब लिखना बंद हो गया। और खाना भी मुझे किसी को खिलाना पड़ता था, स्नान भी किसी को कराना पड़ता था। तो क्या है कि ब्राह्मण माताएं तो सेवादारी है, सेवा करती रही। और हमने सोचा कि थाईलैंड में रहने का फायदा नहीं है, मैं बम्बई आऊं। और बम्बई आते ही एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल में, अंधेरी में हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। और वहां भी बहनों ने सेवा की, वहां की बहनों ने, मतलब बीमारी है इलाज तो करना पड़ता है।
तो दीदी का हमारा ये नया जन्म हुआ है, क्योंकि 1 लाख में किसी को ऐसी बीमारी होती है और उसमें से भी दीदी निकल आई, ये तो बाबा की कमाल है और दीदी की भी हिम्मत है। दीदी अभी हम सबके तरफ से एक प्रश्न है कि अमृत वेला थोड़ा आलस्य आता है, ठंडी में और ज्यादा आ जाता है, तो आपको
ठंडी में और ज्यादा
तो आपको भी आता होगा आलस्य थोड़ा सा। तो आलस्य और ये नींद को भगाने के लिए आप कोई ऐसा कुछ हमें विधि बताओ।
हम तो मम्मा का मिसाल सामने रखते हैं। मम्मा एक बारी मुंबई में थी और रात को कोई मिनिस्टर मिलने आया था, तो मिनिस्टर देरी से आया और जाते जाते 11:30-12 बज गया। रमेश भाई के घर में रहती थी मम्मा, और सवेरे उनका उठने का टाइम जैसे 2:30-3 बजे है, उठ गई। तो मम्मा को रमेश भाई ने पूछा कि मम्मा आप इतना देरी से सोई और इतना जल्दी उठ गई। तो मम्मा ने कहा ये मेरा पीयू को मिलने का टाइम है, वो अपॉइंटमेंट मैं कैसे मिस कर सकती। तो समझो ये मम्मा का मिसाल सबके लिए बहुत अच्छा है कि अमृत वेला हमको समझना है कि ये हमारे साजन कहो पीयू कहो उसको मिलने का टाइम है।
समझ में आया सभी को किसको मिलने का टाइम है? पीयू को। तो आपका आलस्य और नींद भी दूर भाग जाएगी। तो दीदी अभी लास्ट का क्वेश्चन है, और वो भी ये सब हम लोग भट्टी कर रहे, उनका भी इस वर्ष का लास्ट का ये भट्टी है।
नहीं अभी है एक,
नहीं नहीं इस अभी अभी एक है 25 तारीख 26।
हाँ
तो 1 तारीख के बाद है ना, 1 तारीख के बाद। तो ये हम नए साल के लिए कुछ संदेश दीजिए, अभी जो
नए
जो आएगा 2022 आएगा, तो उसके प्रति नए साल के प्रति उनके लिए कुछ संदेश दो जो हाइनो के लिए, ताकि पूरा साल उमंग उत्साह में चला जाए। तो 21 तो अभी पूरा होने वाला है, 22 में वो सब अपने अपने सेंटरों पे पहुंच जाएंगे, तो पूरा साल हमारा कैसे उमंग उत्साह में और तपस्या में कैसे बीते, उसके लिए थोड़ा इनको सभी को प्रेरणा दीजिए।
हमारा लक्ष्य है और रहे कि हमें बाप समान बनना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है, ये दो काम बाकी है। तो तपस्या करके यहाँ से आप जाओ, ऐसे नहीं समझना कि हमारी भट्टी पूरी हुई। हमारी भट्टी जब तक जिंदा है तब तक चलती रहेंगी, ये बुद्धि में रखना है कि तब तक हमारी भट्टी चलती रहेंगी। और उसके लिए हमको जो टाइम टेबल यहाँ मधुबन का है वो टाइम टेबल रखना है, कर्मयोगी बनकर अपने को याद दिलाना है कि हम कर्मयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी है। तो इससे क्या होगा कि योग द्वारा आप अपनी बाप समान स्थिति को मना सकेंगे। तो इसलिए लक्ष्य सामने रखने से बाबा कहते हैं लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसलिए जो बाबा ने पहला लेसन दिया है, देह को भूलो, देहधारियों को भूलो, पुरानी दुनिया को भूलो और मुझे याद करो, ये पहला लेसन पक्का करना है और लक्ष्य सामने रखना। ओम शांति।
दीदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी के लिए हम सब खड़ा होके दीदी का अभिवादन करें, सम्मान करेंगे। दीदी हमारे लिए 87 ईयर होने के बाद में हमारे अंदर कितना उमंग उत्साह दे रही, कितना हमें हिम्मत दे रही है। नए साल के लिए भी आपको कितनी अच्छी बातें बताए, जो नया साल आपका सफल रहे, तपस्या मूर्त रहे। तो इसलिए दीदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा को प्यार करेंगे, याद में